നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനേ. യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജ് പൂഛ രേ ഹേ കി ഗൃഹസ്ഥ ഹോ ചായ ബ്രഹ്മചാരി ഹോ ചായ വാനപ്രസ്ഥി ഹോ ഓർ ചായ സന്യാസി ഹോ യേ കോഈ സിദ്ധിയാ പ്രാപ്ത കരണാ ചാത്തേ ഹേ തോ യേ കൗൺസി ദേവതാ കി പൂജാ കരേ कि जिससे उनको सिद्धियां मिल जाए, विचित्र विचित्र सिद्धियां मिल जाए. और सामान्य आदमी को स्वर्ग कैसे मिले, ये नहीं गए स्वर्ग तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण है, वो स्वर्ग नहीं चाहिए. अक्षय स्वर्ग चाहिए, अक्षय स्वर्ग. ध्रुव स्वर्ग है, ध्रुव माने अचल. एक बार स्वर्ग में गए तो गए तो गए, वापिस आवे ही नहीं, ऐसा स्वर्ग चाहिए. इसका कोई उपाय है क्या? और देवताओं को और पितरों को लोग पूजते हैं तो किस उद्देश्य से पूजना चाहिए? मोक्ष का स्वरूप क्या है? क्या उपाय किया जाए कि मनुष्य स्वर्ग में जाने के बाद वापिस लौटे नहीं, और देवताओं का देवता कौन है, पितरों का पितर कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये हमको बताओ. पितामह ने कहा कि अरे युधिष्ठिर, इतने दिनों से तुम प्रश्न करते हो तो तुम्हारे को प्रश्न करना बहुत अच्छा आ गया. ऐसे गहरे गहरे प्रश्न करते हो, तुम्हारे इन गहरे प्रश्नों का उत्तर वर्ष शतई रपी सैकड़ों वर्षों तक भी देवे तो नहीं दिया जा सकता, बड़ा गहरा प्रश्न है. अब तो हम थोड़े समय के हैं, तुमने प्रश्न किया है, हम देखते हैं किस प्रश्न का उत्तर देके जाए. ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसका जितना प्रदान किया जाए उतना ही वो ज्ञान निर्मल परिमार्जित होता है. इसलिए है तो गूढ़ विषय, लेकिन फिर भी मैं तुमको इसका उत्तर देता हूं. हमने बहुत पहले इतिहास सुना था जिसमें भगवान नारायण का और नारद जी का संवाद हुआ. मेरे पिता शांतनु ने मुझे बताया कि नारायण भगवान है, ये चार रूप के अंदर विराजमान रहते हैं. नर नारायण हरि और कृष्ण, ये चार इनके रूप होते हैं. इनमें नर नारायण है, ये तपस्या करते हैं. बद्री नारायण में जाकर तपस्या करते हैं. बद्री नारायण तो बोलते हैं बद्री का आश्रम. बद्री क्यों बोलते हैं? वहां पर बद्री वृक्ष होते हैं, माने बोर के वृक्ष होते हैं. आपने जड़ा बोरिया को नहीं, मैं छोटा छोटा मोटा मोटा बोरिया बैठे तो बोरिया का झाड़ बट घना सारा है बद्री, बद्री का आश्रम तो बट बद्री नारायण बोले हुए. उन झाड़ों के अंदर भगवान नर नारायण एक सोने का बहुत बड़ा रथ है, उस रथ पर बैठ करके तपस्या करते हैं. उस रथ के आठ चक्का है और उसमें कई प्राणी जुते हुए रहते हैं. उन प्राणियों को उस रथ को खींचने में, रथ के अंदर जुतने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है. वे प्राणी रथ पर बैठे हुए नर नारायण का दर्शन करके अपने को कृतार्थ मानते हैं. उन प्राणियों में होड़ लगी रहती है कि कहीं मेरी सेवा में कमी न आ जाए, मेरी सेवा में कमी न आ जाए, ऐसे जूझ पड़ते हैं उसको चक्र को, अष्ट चक्र वाले रथ को खींचने के लिए. वे नर नारायण बड़े शांत भाव से उसमें बैठे रहते हैं। वो इसलिए बैठते हैं कि सब प्राणियों को दर्शन देवे। तपस्या करते करते एकदम दुबले हो जाते हैं, लेकिन तपसा तेजसा सैव दुर्निरीक्ष्यौ, उनका तेज उनकी तपस्या ऐसी कि वो देख ही न जा सके, आंखें चमचमा जाए। कभी किसी पर एक बार उनकी कृपा भरी हूं दृष्टि किसी आंख से आंख मिल जाती है तो उस समय वो प्राणी अपार आनंद का अनुभव करता है। तो उधर भगवान का ये रूप देखने के लिए एक बार नारद जी के मन में इच्छा हुई। नारद जी उन दिनों में सुमेरु पर्वत पर थे और वहां से वे चल करके सीधे गंधमादन पर्वत पर आए और बद्रीनारायण भगवान के वहां जाकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। उनके मन में आया कितना दिव्य स्थान है, कितनी तपस्या हुई है, यहां देवता गंधर्व सब लोग आते हैं, दर्शन कर करके चले जाते हैं। ओहो, ये नर नारायण भगवान, पहले ये भगवान एक और फिर ये नर नारायण हरि और कृष्ण चार रूप से, इनके तो दर्शन किए जाओ बस इसी में ही उनका अनुग्रह टपकता रहता है। हरि और कृष्ण तो प्राय दिखते ही नहीं है, नर और नारायण ही तपस्या में दिखते हैं। हरि और नारायण तो कस्मिश्चित कारणांतरे स्थितौ, कृष्ण और हरि ये तो किसी और काम में लगे हुए हैं। नर और नारायण तपस्या के द्वारा जनता को तपस्वी बनाते हैं। नारद जी फिर ये भी विचार करते हैं कि नहीं, दुनिया को ये तपस्वी बनाने का काम कि अरे मैं भी कष्ट सहन करता हूं और आप भी कष्ट सहन क्या करो, मेरे विचार से तो देखो युधिष्ठिर तुमने जो पूछा है वो नारद जी ने यही निर्णय किया है कि ये कृष्ण ये नर नारायण भगवान देवताओं के देवत देव हैं और पितरों के सबसे बड़े पितर, सब कुछ वही है। इधर भगवान नर नारायण ने जब अपने तपस्या पूरी की, यज्ञ पूरा किया, पितरों का तर्पण पूरा किया, उस समय नारद जी महाराज उनके पास गए। उनकी छवि देखकर नारद जी मुग्ध हो गए, कहने लगे कि महाराज आपको वेदों में पुराणों में अनेक रूप से गाया गया है, आपको अज अविनाशी कहा है, आप इस संसार के धाता माता हो, पिता माता हो, पिता में मां में जो अपनापन होता है, स्नेह होता है, वो स्नेह आपके साथ हो, आप अमृत स्वरूप हो। संसार के मनुष्य प्राय चारों आश्रमों के द्वारा, जिसमें गृहस्थ आश्रम सबसे गहरा है, मूल आश्रम है, मूल गारहस्थ मूल का माने सब आश्रमों को पैदा करने वाला गृहस्थ आश्रम और सब धर्मों का अनुष्ठान करने वाला गृहस्थ आश्रम। एक संत तो कहते थे कि साधु सन्यासी है ये तो कर्तव्य से भगोड़े होते हैं, भाग जाते हैं, शूरवीर होते हैं गृहस्थ आश्रम में, संतों ने कहा है। गृहस्थ मूल का कितना यज्ञ वगैरह करते हैं और आप इन गृहस्थों की द्वारा की हुई पूजा को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी इतनी लोग पूजा करते हैं, आप कौन सी पूजा को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं? नर नारायण भगवान कहने लगे अवाच्यमे तद वक्तव्यम, नारद जी ऐसी बातें पूछनी नहीं चाहिए और ऐसी बातें कहनी भी नहीं चाहिए, परंतु तुम एक अकेले हो और हमारे में भक्ति रखते हो इसलिए हम आपको बता देते हैं। बहुत गोपनीय विषय है। हम किससे प्रसन्न होते हैं देखो, ये हमारी बड़ाई की बात होती है। जो हमारे पास निकट में रहता है हम उससे प्रसन्न होते हैं। निकट का आशय यह है कि अपनी आत्मा अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को जो संभाले रखता है, अपने स्वरूप पर जो आनंदित रहता है, अपने स्वरूप पर जो गर्व करता है। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन और बुद्धि इन सब से रहित है और अपने आप में स्थित है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। ज्ञानियों के द्वारा जिसके अंदर ऐसा विवेक उदित हो जाता है, ये पूजा हमको सबसे अच्छी लगती है। पितामह भीष्म ने कहा कि जब नारायण भगवान ने ये बात कही तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, महाराज चार रूप थे आपके, दो रूप तो यहां दिखाई देते हैं। आपका एक रूप हमने सुना है कि श्वेत द्वीप में भी विराजमान रहता है। मैं आपके श्वेत द्वीप में जाना चाहता हूं। आपने मेरे पर बड़ी कृपा की, मैंने अपने गुरुजनों से आपकी महिमा सुनी, इसलिए आपके अंदर मेरी भक्ति बनी। श्रेष्ठ पुरुषों के पास जब तक व्यक्ति बैठकर आपके गुह्य विषयों का अपने अंदर के प्रश्नों से समाधान नहीं कर लेता, तब तक उसके अंदर आपकी भक्ति के अंदर अटकाव आता रहता है। इसलिए अच्छे महापुरुषों से संभाषण करके अपना संदेह दूर कर लेना चाहिए। मैंने अपने गुरुजनों की कृपा से तपतम तप है, खूब तपस्या की है और न अनृतम उक्तम, मैंने कभी झूठ भी नहीं कहा है। मैंने मेरे हाथ की रक्षा की है कि मेरे हाथ से कोई किसी प्रकार का गलत काम न हो जाए। मैंने मेरे पैरों की रक्षा की है कि इन पैरों के द्वारा मैं गलत रास्ते पर न चला जाऊं। मैंने मेरे पेट की रक्षा की है कि कहीं अभक्ष्य पदार्थ न खा लूं। मैंने मेरे नेत्रों की रक्षा की है कि कहीं किसी प्रकार न देखने योग्य चीज न देखूं। मैंने मेरे कानों की रक्षा की है कि मैं कोई न सुनने लायक बात न सुनूं। मैंने हे प्रभु आप ही की शरण लेकर आप ही का भजन करना चालू किया, मेरे अंतःकरण में बड़ी पवित्रता है, इसलिए ए प्रभु आपने जो मुझे आज्ञा दी है कि अपने आप के अंदर स्थित रहकर तुम मेरी पूजा करो, बड़ी कृपा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं श्वेत द्वीप में जाना चाहता हूं। नारद जी महाराज ने ऐसी आज्ञा मांगी, तब वे वहां से बद्री आश्रम से चल करके सुमेरु पर्वत पर आए। देखो श्वेत द्वीप वगैरह कहां ही अपने पता नहीं है और पता भी नहीं चल सकता और अपने लोग जा भी नहीं सकते हैं। कहते हैं क्षीर सागर के उत्तर की तरफ क्षीरोदधेर रियोत्तर तो ही द्वीप है, श्वेत नाम ना, उसका नाम श्वेत द्वीप क्यों है कि श्वेत रंग का है वो, बड़ा सुंदर विशाल द्वीप है। क्षीर सागर के उत्तर की तरफ है और सुमेरु पर्वत से 32 ऊर्ध्वम 32,000 योजन और ऊपर है वो श्वेत द्वीप। वहां के लोग हैं कभी, उनके कोई इंद्रियां नहीं, उनके कोई मुख नहीं, उनका कोई खाना पीना नहीं, लेकिन शरीर में ऐसी सुगंध आती है, दूर दूर तक उनके शरीर से सुगंध आती है, बड़ा विचित्र उनका देह होता है। वे अपनी जिह्वा से सब चाटते रहते हैं, काल को भी चाट लेते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह इंद्रियां भी नहीं, आहार भी नहीं करते और वो हिलते दुलते भी नहीं, सुगंधी भी आती है, तो ऐसे पुरुषों की उत्पत्ति कैसे क्या होती है? बड़ा विचित्र श्वेत द्वीप बताया आपने कि देखो भाई, मेरे पिता शांतनु ने हमको बताया था कि देख बेटा देवव्रत, एक बार नारद जी से हमारी मुलाकात हुई, मिलना हुआ, तो हमने नारद जी से पूछा कि नारद जी ये शास्त्रों में आता है श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप ये क्या है। तब उन्होंने बताया था कि देखो इस पृथ्वी पर पहले एक उपरिचर नाम के राजा थे, उपरिचर, वो वसु के नाम से भी विख्यात थे, पर ऊपर रहते थे ना, इसलिए उनका नाम उपरिचर था। वे इंद्र के मित्र थे और भगवान नारायण के परम भक्त थे, बड़े अच्छे भगवान की भक्ति करने वाले, और नारायण भगवान की कृपा से भूमंडल पर उनका राज्य होता था, और इंद्र नारायण भगवान की कृपा के कारण से अपने पास उनको बैठाता था। उसने अपना राज्य, अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपना धन, सब कुछ, यत्तद् भागवतम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था, कभी उसका मन गलत जगह पर गया नहीं, कभी भी उसने कोई किसी प्रकार का पाप भी नहीं किया था। उसने क्या किया कि सप्तर्षियों के द्वारा बनाई हुई एक संगीता थी, उस संगीता को पढ़ा। वो संगीता क्या थी कि उसके अंदर वेदों का, स्मृतियों का, सबका सार था, और भगवान ने उन सप्तर्षियों को ये वरदान दिया था कि देखो समस्त देवताओं का और समस्त तत्वों का, जो सृष्टि के उत्पादक तत्व हैं, और जितने ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उन सब का सार तुम्हारी संगीता के अंदर रहेगा, और तुम इसको वसु को जो है ये संगीता दे दो पढ़ने के लिए। तब उन ऋषियों ने बृहस्पति को ये संगीता पढ़ाई, और उस बृहस्पति जी ने संगीता पढ़ करके वसु नाम का जो राजा था, जो उपरिचर के नाम से विख्यात था, उसको पढ़ाया। भगवान ने फिर उन सब ऋषियों से यही कहा कि उपरिचर के द्वारा बहुत बड़ा यज्ञ होगा, और वो उपरिचर जब इस विद्या को सीख लेगा तो तुम लोगों की बड़ी वृद्धि होगी, तुम जो है राजलक्ष्मी से भी युक्त हो जाओगे, और उपरिचर राजलक्ष्मी से युक्त हो जाएगा, और तुम्हारे बहुत अच्छी अच्छी आगे ज्ञानवती संतानें होंगी, और उपरिचर के बाद ये विद्या लुप्त हो जाएगी, इसलिए उपरिचर को ये विद्या जरूर बताओ। भगवान तो इतना कहकर अदृश्य हो गए। फिर देवताओं ने बृहस्पति को ये ज्ञान दिया, और बृहस्पति जी ने उपरिचर को ये सब शिक्षाएं दी। ये बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र थे, और इन सप्तर्षियों में अंगिरा का भी नाम आता था। एक बार की बात है, देवताओं ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, ध्यान से सुनिएगा, और उसमें उपरिचर नाम का जो वसु था वो उस यज्ञ का सबसे मुख्य यजमान था। तो वहां अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग आए यज्ञ करने के लिए, जैसे इंद्र स्वर्ग का शासन करता है ऐसे उपरिचर का यहां शासन था। बड़े बड़े असंख्य ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए आए। अब वहां आए तो सबने कहा कि भाई यज्ञ के अंदर तो पशु बलि होती है। उपरिचर ने कहा कि न तत्र पशु घातो भूत, या तो पशुवध नहीं करेंगे, तो पशुवध नहीं हुआ। और भी ऋषि मुनियों ने कहा कि नहीं, पशुवध नहीं होना चाहिए, यज्ञ के नाम पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तब वो यज्ञ बड़ा सात्विक यज्ञ होता है। देवता लोग परीक्षा के लिए बोले कि नहीं, हम तो यहां प्रसन्न नहीं होंगे। उपरिचर ने कहा, हे देवताओं, आप सबको भगवान के विधान की तरफ विचार करना चाहिए। प्राणियों की हिंसा करके जो आप अच्छा काम करके प्रसन्न होना चाहते हो और फिर आप भगवान की कृपा भी लेना चाहते हो, दो बात नहीं होगी। इतने में ही भगवान नारायण प्रसन्न होकर के उस यज्ञ में पधारे और उस राजा को तो दर्शन दिए और किसी को भी दर्शन नहीं दिए। अदृश्य और सबके सामने अदृश्य रहे, राजा के सामने दृश्य रहे, और जब भगवान के लिए हविष्य दी जा रही थी, भगवान ने अपने हाथ में वो हविष्य ली और यूं स्वीकार किया, तो बृहस्पति क्रोध में भर गए, जोर जोर से डांटने लगे उसको। ए राजन, तुम तो यजमान हो, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ हविष्य भगवान ने कैसे ले लिया, हमारे सामने देखे ही नहीं, तुम्हारे सामने देखे, तुम्हारे सामने प्रकट हुए, हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हुए, ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाए। वो उनको हमारे सामने प्रकट होकर के लेना चाहिए था, यही न्याय है, क्योंकि यज्ञ के अंदर हम ऋत्विक हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे यजमान हो, चिल्लाए हो। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान ने प्रत्यक्षतः क्यों नहीं सबको दर्शन देते हुए वहां पर ये हविष्य लिया। पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, भगवान सबके सामने प्रकट हो न हो, ये भगवान का संकल्प होता है। तुम आगे की बात सुनो, जब बृहस्पति इस प्रकार से क्रोध में आए और उस यज्ञ को वहीं पर बंद करना चाहे, तो वहां सब आए हुए ऋषि मुनियों ने कहा बृहस्पति से, न रोषम कर तुम अर्हसि, हे गुरुदेव, आप इस यज्ञ के ऋत्विक हैं, आप क्रोध करोगे? दुनिया के अंदर आपको ऐसे यज्ञों की तो बढ़ोतरी करनी है और आप क्रोध करते हो, और वो भी भगवान के सामने करते हो, जिनकी कृपा से यस्य प्रसादम कुरुते, वो जिनकी कृपा से यज्ञ हो रहा है और जिनकी कृपा से वो दर्शन देते हैं, उनके लिए इतना क्रोध करना? बड़े बड़े यहां पर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, नहीं दर्शन दिए, नहीं दिए। द्वीप के निवासी हमको बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं, और आकाशवाणी से सब देवताओं को, वो सब ऋषियों को बोलते हैं कि श्वेत द्वीप वाले जो पुरुष होते हैं वो हमारे चित्त में बैठे रहते हैं, हम उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। उनके सामने भी भगवान मर्जी आए तो दर्शन देवे, नहीं तो नहीं देवे। इसलिए आपके द्वारा ये क्रोध करके और भगवान के लिए ऐसा बोलना, ये अच्छा नहीं है। श्वेत द्वीप वालों को जब भगवान दर्शन देते हैं स्तुति करने पर, तो एक ही बात बोलते हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, नमस्ते स्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज, बस नमस्कार के अलावा वो कुछ नहीं बोलते। आपको तो भगवान को नमस्कार करना चाहिए, भगवान के नमस्कार से बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती है। बृहस्पति जी, आप अपने याज्ञ की क्रिया के द्वारा भगवान को वश में करना चाहोगे क्या? नहीं होगा। हमने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, एवं सु तपसा चैव हव्य कव्य तथैव च, और हमने हव्य कव्य कई यज्ञ किए, कुछ नहीं हुआ। देवो अस्माभिर् न दृष्ट है, वो तो प्रसन्नता से दर्शन देते हैं, और उनकी प्रसन्नता का राज केवल उनको हृदय से नमस्कार करना होता है। आप इस यज्ञ को करने के इतने अभिमानी हो गए? तब जो है बृहस्पति जी, कुछ इनको ये बात समझ में आई, और फिर उन्होंने वो यज्ञ पूरा कर दिया। बृहस्पति जी ने कहा ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए था। सबके मन में ये बात आई कि देखो बृहस्पति जी ने अपना अपराध स्वीकार किया, ये कितनी ऊंची बात है। देखो जो आदमी अपराध कर ले वो इतना खराब नहीं है, अपराध को स्वीकार नहीं करते ये बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी भारी गलती है। इसी प्रकार से एक बार उपरिचर को ब्राह्मणों के श्राप से स्वर्ग से भी भ्रष्ट होना पड़ा और इतना नीचे गिरे, पृथ्वी से भी नीचे जाकर रसातल में चले गए कि महाराज ये क्या दशा हुई। कि कोई चिंता की बात नहीं, फिर भगवान की कृपा से ऊपर तो आ गए। कि नहीं बताओ ये कारण क्या हुआ, ताकि हम लोग भी समझें कि जीवन में छोटी छोटी बातों से हमारा पतन नहीं हो। युधिष्ठिर जी ने पूछा तो भीष्म पिता मैंने कहा कि देखो एक बार एक जगह यज्ञ हो रहा था, उसमें ज्ञानी ऋषि भक्त देवता ये सब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई यज्ञ के अंदर हिंसा होगी, अजेन यष्टव्यम, अजेन अज, अज बोलते हैं बकरे को, अज बोलते हैं ब्रह्मा को, अज बोलते हैं जो पैदा ना हो। तो देवताओं ने कहा कि साहब यहां तो अज का अर्थ बकरा ही लेंगे, बकरा इस यज्ञ में न चलेगा। ऋषियों ने कहा कि नहीं, अज का अर्थ बकरा नहीं है, अज का अर्थ जो पैदा नहीं हुआ वो अनाज, अन्न जो है, तिल है, चावल है, इनसे हम यज्ञ करते हैं, बस यही होगा। अज का अर्थ यहां बकरा नहीं लिया जाएगा। कहा कि नहीं हम तो बकरा अर्थ लेंगे, दोनों में हुआ शास्त्रार्थ। तो कहा किससे पूछें। उसी समय में ये वसु उपरिचर नाम का वसु जा रहा था, ये जहां यज्ञ हो रहा था उसके पास के क्षेत्र से जा रहा था। तो देवताओं ने कहा इससे पूछो, ऋषियों ने कहा इसने यज्ञ करवाया है, इससे पूछो। ए उपरिचर ठहरो, ठहरा दिया उसको। देखो कहा देखो दो का कलह होता है, बीच में जो मध्यस्थ होता है वो परमेश्वर का रूप होता है, किसी का पक्ष लिए बिना तुमको इसका निर्णय करना पड़ेगा। कि बोलो क्या बात है, अज का अर्थ क्या लिया जाएगा, बकरा लिया जाएगा कि अन्न लिया जाएगा, बताओ। कहा कि बकरे का अर्थ आप में से कौन मानते हैं, कि इससे क्या मतलब है, तुम तो ये बताओ कि यहां यज्ञ के अंदर बकरे का अर्थ लिया जाएगा कि अन्न का अर्थ लिया जाएगा। नहीं मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन बकरे का अर्थ लेता है और कौन अन्न का अर्थ लेता है, मैं उनकी बुद्धि के अंदर पहुंचना चाहता हूं। कि देवता लोग अज का अर्थ बकरा मानते हैं और हम ऋषि मुनि हैं जो अज का अर्थ अन्न मानते हैं, क्या करना चाहिए। उपरिचर कई देर तक सोचता रहा, सोचते सोचते उसने कहा कि मन में ही सोचा कि जो निर्णायक होता है उसको सही निर्णय देने से पहले उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए कि कौन नाराज होगा तो क्या परिणाम होगा। यदि मैं ऋषियों का पक्ष लेता हूं तो देवता लोग कुपित होंगे, तो देवताओं के कोप से सृष्टि के अंदर बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। और यदि मैं ऋषियों का पक्ष नहीं लेता हूं, देवताओं का पक्ष लेता हूं, ऋषियों का पक्ष नहीं लेता हूं, तो ऋषि केवल मुझे ही श्राप देंगे, इसका परिणाम ये होगा। तो अपने पर भले ही संकट आ जाए, सृष्टि पर संकट नहीं आना चाहिए। जब मुझे मध्यस्थ ही बनाया है तो मेरा काम सबका हित देखने का है, ऐसा खूब अंदर विचार किया। विचार करके कहा हे ऋषियों, आप लोग केवल मंत्र की आहुति देते हो और आपके दिए हुए आहुति के आह्वान से देवता लोग आते हैं, तो आपकी नियत क्या रहती है कि देवता आए? तो देवताओं की भावना को पहचानो, और यहां अज का अर्थ बकरा होगा। बकरे का नाम सुनते ही ऋषि मुनि एकदम दुखी हो गए। अरे इसने हमारा इस प्रकार से अपराध किया है, जाओ इसी मुहूर्त के अंदर, अस्मिन्ने वो मुहूर्ते अधो वही संभवू है, नीचे गिर जाओ, नीचे जाओ। तो पृथ्वी पर भी नहीं, पृथ्वी पर तो मनुष्य रहते हैं, तुम तो मनुष्यों से भी गए भी थे, रसातल में जाओ, ऊपर चढ़ा चढ़ के बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हे ऋषियों मैं प्रणाम करता हूं। रसातल में चला गया। देवता लोग आपस में विचार करने लगे कि देखो जब उपरिचर ने यज्ञ किया था तब इसने कहा था हमारे यहां हिंसा नहीं होगी, और आज इसने अज का अर्थ बकरा बता करके हमारा पक्ष लिया है, तो हमें भी इस उपरिचर की पूरी रक्षा करनी है। तो उन्होंने यज्ञ करके एक वसुधारा बनाई, वसुधारा, वो वसुधारा से उसका पालन होता गया उपरिचर का। और जो है देवताओं ने यह भी कह दिया कि यज्ञेषु सुरिताम विप्रेर वसोर धाराम समाहित ही, पृथ्वी के अंदर तुम रहना, तुम वहां पर किसी थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेना, तुम किसी प्रकार से वहां दुख नहीं पाओगे। हम भगवान के पास जाते हैं, देवता लोग भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मुझे सब पता है, उपरिचर अज का अर्थ बकरा नहीं लेना चाहिए, मन में रखता हुआ भी तुम्हारी बात इसलिए रखी है कि देवताओं तुम सृष्टि में नुकसान पहुंचाते हो, और तुम्हारे भलाई सृष्टि की भलाई के लिए उसने अपने में दंड स्वीकार किया है। जो आदमी दूसरे की भलाई के लिए अपने आप को संकट में डाल देता है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य होता है, तुम कोई चिंता मत करो। पश्चात भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा गरुड़ तुम जाओ रसातल में और उसको ऊपर उठा करके आकाश में उड़ाओ। तब वो गरुड़ रसातल में गया, उपरिचर से कहा कि हे उपरिचर तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा हुई, आओ हम तुमको ऊपर ले चलते हैं। तो वो गरुड़ जी महाराज दौड़े, वो उड़ते उड़ते ऊपर लाकर आकाश में जाओ, हमारी विद्या तुम्हारे में, तुम भी आकाश में उड़ते रहो। उसमें वे उड़ते रहे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि नारद जी महाराज वहां नर नारायण से आज्ञा लेकर श्वेता द्वीप में गए और वहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए। क्या सुन, अब देखो भगवान की यहां बड़ी सुंदर मूर्ति, भगवान का जो शरीर है क्वचित चंद्राद विशुद्ध आत्मा, कहीं कहीं तो चंद्रमा से भी ज्यादा चमकता है, और कहीं चंद्रवत, कहीं चंद्रमा के समान, क्वचित कृषाणु वर्ण है, कहीं कहीं पर कृषाणु माने आग के समान चमक रहे हैं, क्वचित हिष्ण्याकृति, कहीं कहीं पर नक्षत्रों के समान है, कहीं कहीं पर कौवे है ये सुख के समान, तोते के समान एकदम हरे हरे से दिखते हैं, कहीं स्फटिक मणि के समान है, और कहीं नील वैदुर्य मणि के समान है, कहीं शरीर में उनके मयूर ग्रीव वर्णाभ है, मोर की जो गर्दन होती है कैसी सुनहरी नीली चमकीली नीली मोर की गर्दन, उसके समान उनकी आभा है, किसी एक रंग में देख नहीं सकते, तरह तरह का उनका रंग दिखता है, और कभी कभी उनको थोड़ा तिरछा देखते तो और रंग दिखता है, थोड़ा और तिरछा देखते तो और रंग दिखता है, और एक टक देखते रहते तो उस रंग में ही अनेक प्रकार के रंग यूं खिलते रहते हैं। नारद जी महाराज देख के हतप्रभ हो गए, हे प्रभु इतना दिव्य रूप आपका, श्वेत द्वीप निवासियों को आप कभी एक रूप दिखाते हैं क्या? बड़े भाग्यशाली हैं प्रभु ये। और भगवान ने अपने हाथ में कमंडल ले रखा है, यज्ञ की सामग्री ले रखी है, और कुशा अपने बगल में दबा रखा है, मृग चर्म उन्होंने पहन रखा है, यहाँ पीताम्बर वगैरह नहीं है, और मणियों मणियों की माला पहन रखी है भगवान, एकदम ऋषि मुनियों जैसा वेश। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और फिर भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, नारद जी क्या बात है, कैसे आए, वृणीश्व वरम, वरदान मांगो। नारद जी ने कहा, महाराज इतना दिव्य आपका स्वरूप है, मैं सोच भी नहीं सकता था, ये स्वरूप आपने मुझे दिखाया है, इससे बढ़कर मैं क्या मांगू आपसे, आपसे बढ़कर कुछ हो तो आपसे मांगू, आपसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। सर्वमूर्ति महान प्रभु, साप तो सर्वमूर्ति हो। पितामह भीष्म कहने लगे, नारद जी की ये दशा हो गई कि क्षण क्षण में वो भगवान को कितने कितने रूपों में देखते हैं, वो वहां सो भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। अनेक प्रकार से भगवान की उनकी बातचीत हुई और फिर भगवान से कहा, महाराज ये रूप कभी कोई मनुष्य शरीर में रहने वाले प्राणी आपके देख सकते हैं क्या? कि हाँ देख सकते हैं। कब देखो नारद जी, मैं अपनी बात बताऊं कि मैं मत्स्य रूप से अवतार लूंगा, मैं कूर्म रूप से अवतार लूंगा, मैं वराह रूप से अवतार लूंगा, नरसिंह है, वामन है, राम है, परशुराम और राम दशरथ नंदन, और राम माने बलराम और कृष्ण और कल्कि, इनके रूप 10 हैं, ये 10 बड़ी बड़ी लीलाएं करूंगा, मछली बनकर सृष्टि की रक्षा करूंगा, कछुआ बनकर समुद्र मंथन में सहायता करूंगा, वराह बनकर के हिरण्याक्ष का वध करूंगा, नृसिंह बनकर के यज्ञों की रक्षा करूंगा और हिरण्यकश्यप का वध करूंगा, और वामन बनकर के बलि का राज्य मैं ले लूंगा, परशुराम बनकर के क्षत्रियों का उच्छेदन करूंगा, दशरथ नंदन राम बनकर के उसी क्षत्रिय कुल में पैदा होकर क्षत्रिय का नाश भी करूंगा और क्षत्रिय कुल की वृद्धि भी करूंगा, यश बढ़ाऊंगा। मैं परशुराम के रूप में क्षत्रियों का नाश करके और क्षत्रियों के कुल में जन्म भी लूंगा, रावण आदि का वध करूंगा, और भैया कृष्ण रूप में तो नारद कितनी कितनी मेरी लीला होगी। कंस केशी तथा कालम अरिष्टं च महासुरम चाणूरम च महावीर्यम मुष्टिकं च महाबलम प्रलंबम धेनुकम चैव अरिष्टम विषरूपिणम, सबका मैं वध करूंगा, गोकुल में रहूंगा, 7 दिन तक गोवर्धन धारण करूंगा, इंद्र के साथ मेरी बातचीत होगी, फिर इन सब का वध करूंगा। बाणासुर के यहां भगवान शंकर से युद्ध भी करूंगा, लोगों को अनेक प्रकार से मनोरंजित करूंगा, जरासंध से हारूंगा भी। कृष्ण लीला मेरी बड़ी विचित्र होगी। नारद जी महाराज ने सब बात सुनकर के कहा कि प्रभो कृष्ण लीला देखने का मेरा बड़ा विचार है। तो कहा कि ठीक है, जब कृष्ण लीला मेरी हो तो उस लीला में तुम आ जाना, परंतु एक बात है, मेरी व्रज लीला है, वो व्रज लीला तो केवल मेरे अपने आप की लीला है, उसके अलावा सब लीलाओं में तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। नारद जी महाराज वहां से रवाना होकर के और अपने स्थान पर आ गए। पितामह भीष्म ने कहा, देखो युधिष्ठिर, ऐसे भगवान की और भक्तों की बड़ी गोपनीय और बड़ी अच्छी अच्छी श्रेष्ठ बातें होती रहती हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण।
कल 3 बजे गीता जी का पाठ है, कल 3 बजे से ठहर भाई, कल 3 बजे से गीता जी का पाठ है। हाँ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।